നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. കുരുപ്രവീർ പാണ്ഡവഗണ് അഭിമന്യു കാ വിവാഹ കർക്കെ അപ്നെ സുഹൃത് യാദവോ സഹിത് ബഡേ പ്രസന്ന ഹുവേ ഓർ രാത്രി മേ വിശ്രാം കർക്കെ ദൂസരെ ദിൻ സവേരെ ഹി വിരാട് കി സഭാ മേ പഹുഞ്ച് ഗയെ. സബ്സെ പഹലെ സമസ്ത രാജാവോ കെ മാനനീ ഓർ വൃദ്ധ വിരാട് ഏവം ദ്രുപദ് ആസനോ പർ ബൈഠെ. ഫിർ പിതാ വസുദേവ് ജി കെ സാത് ബലരാം ഓർ ശ്രീകൃഷ്ണ വിരാജമാന ഹുവേ. സാത്വികി ഓർ ബലരാം ജി തോ പഞ്ചാല രാജ ദ്രുപദ് കെ പാസ് ബൈഠെ തഥാ കൃഷ്ണ ഓർ യുധിഷ്ഠിര രാജാ വിരാട് കെ സമീപ് വിരാജമാൻ ഹുവേ. ഇസ്കെ പശ്ചാത് ദ്രുപദ് രാജ കെ സബ് പുത്ര ഭീംസേൻ അർജുൻ നകുൽ സഹദേവ് പ്രദ്യുമ്ന സാംബ വിരാട് പുത്രോ കെ സഹിത് അഭിമന്യു ഓർ ദ്രൗപദി കെ സബ് കുമാർ യേ സഭി സ്വർണ ജടിത് മനോഹർ സിംഹാസനോ പർ ക്രമശ ബൈഠ ഗയെ. जब सब लोग वहां आ गए तो पुरुष श्रेष्ठ आपस में मिलकर तरह तरह की बातें करने लगे. फिर कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे. तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सुबल पुत्र शकुनी ने जिस प्रकार कपटी द्यूत में हराकर महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था, वह सब आपको मालूम ही है. पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे, परंतु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने 13 बरस तक उस कठोर नियम का पालन किया. अब आप लोग ऐसा उपाय सोचें जो कौरवों और पांडवों के लिए धर्मानुकूल हो, दोनों के यश को बढ़ाने वाला हो, क्योंकि अधर्म के द्वारा तो महाराज युधिष्ठिर देवताओं का राज्य भी लेना नहीं चाहते हैं. हां, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है. यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़े, तथापि अपने सुहृदों सहित ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे. अब ये पुरुष प्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को परास्त करके प्राप्त किया था. ये बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए थे और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे. अब उनके बड़े चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिर की धर्मज्ञता और इनके पारस्परिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें. ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहेंगे और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है. इसलिए यदि आप धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय धृतराष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्याय देखकर इनके सुहृदगण भी इनका मुकाबला करेंगे. किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचारों का पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं. इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा, पवित्र चित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान पुरुष को दूत बनकर जाना चाहिए. हे जन्मेजय, श्री कृष्ण का ये धर्मार्थ युक्त भाषण बड़ा ही मधुर और पक्षपात शून्य था. बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर वहां खड़े होकर कहने लगे, आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना होगा ना? वह जैसा धर्मराज के लिए हितकर है वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है। वीर कुंती पुत्र आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो ये बड़े आनंद में रह सकता है। अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूत भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडव का निपटारा हो जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां जो दूत जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म हो, धृतराष्ट्र हो, द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, विदुर हो, कृपाचार्य हो, शकुनी कर्ण और शस्त्र और शास्त्र में पारंगत दूसरे धृतराष्ट्र पुत्र उपस्थित हो और जब सब वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध पूर्वासी भी वहां आ जाए तब उन्हें प्रणाम करके युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए, अकेले में नहीं। किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए। उन्होंने सबल होकर भी इनका धन छीना था, युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी और अपने प्रिय दूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया है। यदि शकुनी ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता। बलराम जी की ये बात सुनकर सात्यकी एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए कहने लगा, क्या बात करते हैं, पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसा ही वे बात कहता है, आपका भी जैसा हृदय वैसी बात कर रहे हैं। संसार में सूरवीर भी होते हैं और कायर भी होते हैं, लोगों में तो ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं। ये ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनी इस क्रिया में पारंगत था, किंतु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी, युधिष्ठिर की जुए में श्रद्धा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि उसने इन्हें जुए के लिए आमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकूल आप कैसे कह सकते हैं। अजी कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया है, क्या जुए का प्रस्ताव युधिष्ठिर की ओर से था? जुए का प्रस्ताव दुर्योधन के पक्ष की ओर से था। महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी कर चुके हैं, अब स्वतंत्र हैं, अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में उनसे भीख मांगे किसी प्रकार संभव नहीं है। भीष्म द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है, समझाया भी होगा, किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता तब हम क्या करें? अब मैं रणभूमि में अपने पैने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महाराज युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा। यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार नहीं हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाओ। भला ऐसा कौन है जो संग्राम में गांडीवधारी अर्जुन, चक्रपाणि कृष्ण, दुर्धर्ष भीम, धनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन करने वाला कोई संसार में जन्मा हो। धृष्टद्युम्न पांडवों के पांच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद प्रद्युम्न और सांब आदि के प्रहारों को सहन करने की किसी में शक्ति है? हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। आत्ताई शत्रुओं को मारने में तो कोई दोष नहीं है, शत्रुओं के आगे भीख मांगना ये अधर्म और अपयश का कारण होगा। अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए नहीं तो सारे कौरव युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा, पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे जो आज तक करते आए हैं, तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता के कारण उसी किसी बात कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जसता है, फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए, ऐसा मेरा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। यदि उसको मीठी बातों में कुछ कहेंगे भी वो उसका दूसरा अर्थ लगाएगा। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं, वे जहां नरमी देखते हैं वहीं अपना मतलब सदा हुआ समझ लेते हैं। हम यह भी करेंगे पर साथ ही दूसरा उद्योग भी प्रारंभ करेंगे। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य है, धृष्टकेतु, जयत्सेन, केकयराज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। क्या आप ये सोचकर बैठे हैं कि दुर्योधन ने इन दिनों में कुछ नहीं किया होगा? उसको 12 वर्ष का राज्य मिला है, उसने न जाने कितने राजाओं के पास दूत भेजे होंगे, कितनों को आमंत्रित किया होगा, कितनों को अपने पक्ष में किया होगा, कितनों से उसने वचन भी ले लिए होंगे, शायद उसने कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रबंध किया होगा। शत्रु को कभी किसी प्रकार निर्बल नहीं समझना चाहिए, इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे इसके लिए जल्दी करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये हमारे पुरोहित जी बड़े विद्वान हैं, इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेज सकते हैं। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग अलग भी बात करने में कोई हानि नहीं मालूम देती। सबके सामने भी बात करें और अलग अलग भी कहना हो तो कह सकते हैं। द्रुपद जी बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत व्यावहारिक बात कही है, इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोगों को अब बड़ी सुनीति से काम लेना है, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं, हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ऐसा संदेश भिजाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वो हम सबको मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा, और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया तो फिर गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर उन अपने सलाहकार और सगे संबंधियों सहित वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने कृष्ण का सत्कार करके उन्हें भाई बंधुओं सहित विदा किया। भगवान के द्वारिका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों की सहायता के लिए संदेश भेजे, और वे सभी नृपतिगण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहां अब सेना इकट्ठी हो रही है, यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। इधर राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा होता है, विद्वान श्रेष्ठ है, विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता श्रेष्ठ है, और सिद्धांतों में ब्रह्मवेत्ता सबसे श्रेष्ठ है। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेत्ताओं में प्रमुख हैं, आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है, तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था, शकुनि ने कपट द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था, इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल सकते हैं। विदुर भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि में मतभेद कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा, योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे, तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इस बीच में सुबिते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। पहले इनमें आपस में ही मतभेद होगा। आप अधिक समय न लगाएं और सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकें कौरव, उससे पहले आप पहुंच जाएं। ऐसा भी संभव है आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान भी ले। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा आप पर विश्वास है कि इनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के क्लेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बरते हुए धर्मकुल की चर्चा चलाकर आप उनका चित्त बदल देंगे। आप उनको याद दिला सकते हैं कि आप किस कुरुवंश में हैं, जिसमें वो राजा हुए, भरत राजा हुए, उसमें अमुक राजा हुए, पूर्व राजाओं का इतिहास बताओ। युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में आप प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल दिए। राजन, हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां था राजाओं के पास दूत भेजे। इसके पश्चात श्री कृष्ण को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारिका गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब मालूम हुआ कि श्री कृष्ण विराटनगर से द्वारिका जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सेना के साथ दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने कृष्ण को सोते हुए पाया। तब दुर्योधन शयनागार में जाकर उनके सिराने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। सभा में प्रवेश करते ही सोते हुए कृष्ण को उन्होंने अपनी श्रद्धा से नम्रता के साथ हाथ जोड़े और श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। कई देर तक जब भगवान जगे नहीं, अर्जुन इसी प्रकार हाथ जोड़े खड़े थे। जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। और उससे आने का कारण पूछा। अर्जुन, अकस्मात कैसे आए हो? पीछे से दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं भी आया हूं। अरे दुर्योधन, तुम भी आओ, बैठो। आप लोगों के आने का कारण क्या है? तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, आपको मालूम ही है कि पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसे अर्जुन से मित्रता है, वैसे मुझसे भी है। तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध है और आज आया भी पहले मैं हूं। सत्पुरुष लोग उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है, अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें, मैं कहूं वैसा करें। श्री कृष्ण ने कहा आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं है, किंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले गई है। आप पहले आए और अर्जुन को मैंने पहले देखा, दोनों बराबर हो गए, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं, सभी संग्राम में जूझने वाले हैं, उन सब का नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और एक तरफ केवल मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। ये 2 पक्ष हैं। सभी का नाम नारायण होने से वो नारायणी सेना है। अब इन दोनों में से आप दोनों में पहले अर्जुन को देखा, तो इन दोनों में चुनने का अधिकार पहले अर्जुन को है। मैंने देखा तो है, ये तो है ही, इसके अलावा भी जब किसी किन्हीं 2 वस्तुओं में पहल चुनने का यदि कहीं रखा जाता है विचार, तो वो छोटे का होता है। अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए दोनों में से तुम्हें जिसे लेना हो अर्जुन ले ओ, नारायणी सेना लोगे या मुझे लोगे, मैं निहत्ता रहूंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से चरणारविंद, चरणारविंद से मुखारविंद का दर्शन किया, प्रभावित होता चला गया, मन में बड़े भाव भक्ति के भाव उमड़ने लगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कृष्ण मैं केवल आपको लेना चाहता हूं। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रु दमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर वो उछल कर कहने लगा तो कृष्ण आपकी नारायणी सेना मेरी, अब तो कोई बात ही नहीं ना। कृष्ण का ये तो मेरी शर्त थी, वो पूरी हुई। इसके पश्चात वह दुर्योधन बड़ा खुशी खुशी और नारायणी सेना के मद में आकर बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलदेव जी ने कहा पुरुष श्रेष्ठ, मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, अतः उनका रुख देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न तुम्हारे ही साथ रहूंगा। तुम जानते हो जब अर्जुन ने उनको स्वीकार कर लिया है तो क्या युद्ध भूमि में मैं कृष्ण के विपरीत खड़ा होऊंगा? नहीं, दोनों की सहायता नहीं करूंगा। बलराम जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उनका आलिंगन किया और यह समझ कर कि आज मैंने कृष्ण जैसे चतुर को भी ठग लिया है, नारायणी सेना जो मुझे मिली है उसने अपनी जीत पक्की समझ ली। और इसके पश्चात वो कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा ने उसे 1 अक्षौहिणी सेना दी। सारी सेना के सहित दुर्योधन हर्ष के मारे फूला नहीं समाया और वहां से चल दिया। जन्मेजय दुर्योधन के चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से अकेले में पूछा, अर्जुन मैं तो लड़ूंगा नहीं, फिर तुमने क्या समझकर मुझे मांगा? अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति एक अपार प्रेम का बादल उमड़ गया और वो कहने लगा, भगवान ये कोई आज की बात नहीं है, मेरे मन में सदा सदा से विचार रहता है कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं। वनवास काल में अनेक देवताओं से शस्त्र लेते लेते भी मेरे मन में ये विचार आया कि आप मेरे सारथी हो, आपके सामने इन शस्त्रों का प्रयोग करूं तब तो कोई बात बने। मेरी कई रात्रियां निकल गई, रात में भी कई बार अचानक मेरी नींद उड़ जाती थी, बैठे बैठे सोचता था कि कभी कृष्ण मेरे जीवन के और मेरे रथ के सारथी बन सकते हैं क्या। आज आपने ये दोनों शर्तें रखकर मेरी अंतर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, हे कृष्ण अब आप इसे पूरी करने की कृपा करें। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारी यदि यही कामना हो तो मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। अर्जुन भगवान से लिपट गए और वहां से प्रेम से विदा होकर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्यान्य दाशार्य वंशी प्रधान पुरुषों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। शल्य माद्री के भाई थे, नकुल सहदेव के मामा अर्थात पांडवों के मामा थे, बड़ी प्रसन्नता से अपनी सेना लेकर आ रहे थे। उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो कोस में पड़ता था। वे एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे तथा उनकी सेना के सैकड़ों हजारों क्षत्रिय वीर संचालक थे। इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले आ रहे थे। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने बड़ी चाल खेली। उसने स्वयं जाकर के उनका सत्कार का प्रबंध किया, बहुत अच्छे शिल्पियों के द्वारा रमणीय सुंदर सभा भवन बनाए, तरह तरह की आमोद प्रमोद क्रीड़ाओं की सामग्री रखी। जब जब शल्य उन सभाओं में उस व्यवस्थाओं में पहुंचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवता के समान स्वागत करते। एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचते तो वह उससे भी विचित्र कांतिमयी सभा। ऐसे अनेक अनेक पड़ाव में उन्होंने अपना विशेष सत्कार देखकर बड़े प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, सेवकों देखा हमारे प्रिय युधिष्ठिर ने कैसी कैसी हमारे पड़ाव की व्यवस्था की है, इन सभाओं को युधिष्ठिर के किन आदमियों ने तैयार किया है उन्हें मेरे सामने लाओ, मैं उनको इनाम देना चाहता हूं। शल्य तो यही समझ रहे थे कि सारा प्रबंध युधिष्ठिर ने किया है, मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। युधिष्ठिर को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। सेवकों ने कहा, महाराज ये प्रबंध तो दुर्योधन की ओर से है, अभी हम दुर्योधन को आपकी सेवा में उपस्थित करते हैं। दुर्योधन को जब ये पता चला कि हमारी सेवा शुश्रूषा से शल्य बड़े प्रसन्न हो गए हैं, तो अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है और कहते हैं बुलाओ, तो वो सामने गया। मद्रराज ने दुर्योधन को देखकर उसका सारा प्रयत्न उसी का जानकर प्रसन्नता से गले लगाया और कहा, वत्स, बहुत अच्छा प्रबंध किया, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। दुर्योधन ने कहा, महानुभाव, आप हमारे मामा हैं, माद्री भी तो हमारी माँ है, जो पांडवों का मामा वो हमारा मामा, हम भाई भाई हैं, आपका वाक्य सत्य हो, आपके लिए सब बराबर है, आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मेरी इच्छा यह है आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक बनो, सेनापति बनो। शल्य ने कहा, वचन तो मैंने तुमको दे दिया, मेरा मन तो पांडवों की तरफ का था, लेकिन अब तो मैं क्या बताऊं, अपने वचनों में आ गया हूं, तो मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। बताओ तुम्हारा और क्या काम करूं। दुर्योधन ने कहा, नहीं महाराज, बस हो गया, मेरा तो अपना काम पूरा हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन तुम अपनी राजधानी में जाओ, मुझे अब युधिष्ठिर से विशेष रूप से मिलना है, उनसे मिलकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दुर्योधन का, महाराज युधिष्ठिर से मिलकर आप जल्दी आ जाना, हम आपकी वहां बहुत प्रतीक्षा करेंगे, हम तो आपके अधीन है, लेकिन आपने हमको वरदान दिया है ये याद रखना, युधिष्ठिर के पास जाकर आप अपने वरदान को बदल मत देना, क्योंकि क्षत्रिय के मुख से, क्षत्रिय के धनुष से जो बाण निकलता है वो बाण वापस नहीं आता, और मुख से निकली हुई बाणी निकलती है वो भी वापस लौट कर नहीं आती। शल्य और दुर्योधन मिले और दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला गया, और शल्य दुर्योधन को ये सब बात सुनाने के लिए, दुर्योधन की ये सब बात सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। विराट नगर के उपप्लव्य नामक स्थान में पहुंचकर पांडवों की छावनी में आए, वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा। पांडवों ने अपने यहां मामा जी को आता देखकर बड़ा स्वागत किया। फिर मद्रराज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया, भीम और अर्जुन तथा अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर सबके साथ बैठ गए और युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, तुम सब कुशल से तो होना, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वनवास का बंधन तुम्हारा छूट गया, तुमने द्रौपदी और भाइयों सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बहुत बड़ा दुष्कर कार्य किया है, उससे भी कठिन अज्ञातवास को तुमने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। सच है जिसके हाथ में बहुत बड़ा राज्य हो और उसको अकस्मात वन मन में दर दर भटकना पड़े वो दुख कितना असह्य होता है, परंतु तुमने उसे तपस्या मान करके सहन किया है। राजन, क्षमा, दया, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति, ये सभी स्वभावतः तुम्हारे में विद्यमान है, तुम बड़े कोमल स्वभाव के हो, उदार हो, ब्राह्मण सेवी हो, दानी हो, धर्मनिष्ठ हो, तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद शल्य ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा शुश्रूषा तथा अपने वरदान देने की बात भी युधिष्ठिर को सुना दी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मेरे मन में कोई विचार नहीं है, आप प्रसन्न होकर दुर्योधन की सहायता देने का वचन दे दिए हैं तो वो बहुत अच्छा किया, उसको निभाइए, परंतु वो परंतु क्या है युधिष्ठिर? परंतु एक काम मैं आपसे कराना चाहता हूं राजन, आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय आप अर्जुन की रक्षा करें और हम लोगों के विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, अर्जुन के बाणों की प्रशंसा करते रहें, कर्ण के बाणों को लेकर आप उसको उत्साहहीन बनाएं, तेरे में कोई बल नहीं, ये देख अर्जुन का कितना है, ऐसे आप उनको कहते रहे। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारा मंगल हो, इतने बड़े योद्धा को तुमने सारथी के लिए कहा है, मैं सारथी बन जाऊंगा, वचन दिया हूं, संग्राम भूमि में कर्ण का अवश्य सारथी बनूंगा, क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री कृष्ण के समान ही समझता है, उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूंगा, उससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना भी सहज हो जाएगा। तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था, सूत पुत्र ने जो तुम्हें कटु वचन सुनाए थे, द्रौपदी को भी सुनाए थे, वो मेरे चित्त में चुभ रहे हैं। उसका सारथी बनकर उसको मैं विजय दिलाऊं, मेरा मन स्वीकार भी नहीं करता है। दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं। देखो, इंद्राणी के स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था। युधिष्ठिर ने पूछा, इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार घोर दुख पड़ा महाराज, ये मुझे सुनाइए, इसकी कथा अब कल सुनाएंगे। अब दूसरी कथा आएगी ना, शल्य दूसरी कथा सुनाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री